Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वह उस समय उपशांत हो जाती हैं और विशेष विशेष वृत्तियों को निष्पन्न करने वाले जो निमित्त होते हैं. क्यों होती है विशेष वृत्ति? पहले कार्य रूप जो ये सूक्ष्म शरीर है इसमें तादात्म्य अभिमान कर लेता है जीव. ये तादात्म्य अभिमान कहा जाता है कार्य विद्या अध्यास. और अध्यास हुआ तो फिर इस कार्यक्रम संघात को मैं समझ लिया, तो कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त वस्तुएं इदम के रूप में दिखते हैं, यह के रूप में दिखते हैं. और जो यह के रूप में दिख रहे हैं पदार्थ, उनको फिर अपना दृश्य समझता है, चक्षुरादि इंद्रियों का विषय समझता है. चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से उन दृश्य रूपादि विषयों का दर्शन होता है, चाक्षुष प्रत्यक्षादि रूप ज्ञान होता है. और उन ज्ञान का अपने आप को आश्रय मान लेता है, प्रमाता मान लेता है. तो प्रमाता प्रमिति हुआ ज्ञान और प्रमेय हुआ वह विषय. ये जागृत स्वप्न में रहते हैं. इन सब का निमित्त क्या है? अविद्या, काम, कर्म. और ये सुसुप्ति के समय शांत रहते हैं. अविद्या का मतलब कार्य अविद्या. कार्य अविद्या का मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर में आत्माभिमान. ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर में उस सुसुप्ति के समय आत्माभिमान नहीं होता. और कोई फलोन्मुख प्रारब्ध भी उस समय नहीं रहता, शांत होता. केवल जीवन अदृष्ट रहता है, यानी जीवित रहने का निमित्त भूत मात्र प्रारब्ध है. इसलिए वो सामान्य मन की स्थिति है. सामान्य मन की इस शरीर में स्थिति बनाए रखने वाला अदृष्ट मात्र विद्यमान है. वह किसी प्रकार का विक्षेप नहीं पहुंचाता. वो खाली आपके सूक्ष्म शरीर को आपके स्थूल शरीर से उत्क्रमण करने नहीं देता. वो स्थूल सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य अभिमान न होने पर भी इसी स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को बनाए रखने में निमित्त बन जाता है. ऐसा जीवन अदृष्ट रहता है सुसुप्ति में, लेकिन वह किसी विक्षेप को उत्पन्न नहीं करता. विक्षेप को उत्पन्न करने वाला प्रारब्ध भी शांत हो जाता है. वो जागृत स्वप्न में रहता है. ऐसी स्थिति में मन रहेगा सारे विशेष विशेष वृत्ति रूप विक्षेपों से रहित, शांत, अविद्या को मात्र आलंबन बना करके रहेगा. और मन रूपी उपाधि जैसी होती है ऐसा ही आत्मा प्रतीत होता है. मन उपाधि का आत्मा, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि सधी ही स्वप्नो भूत्वा ध्यायति व लेलायति व. मन जैसा होता है, जिस व्यापार वाला होता है, वैसा प्रतीत होता है. तो सुसुप्ति के समय मन की अवस्था कैसी है? विक्षेप रहित है. वो अकेली अविद्या को मात्र विषय कर रहा है, किसी भेद को आलंबन नहीं बना रहा है, भेद विषयक नहीं है. इसलिए उपाधि में भेद न होने के कारण जो उस उपाधि से युक्त तमर्थ है वह भी उस समय माना जाता है शांत है, कोई विक्षेप नहीं है, एक है. और समाधि में भी ऐसा ही होता है, शांत रहता है, विक्षेप रहित होता है, एक होता है। सुषुप्ति के समय भी एक है, इसलिए माना जाता है आत्मा के अद्वैत को समझाने के लिए और सुखरूपता को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में सुषुप्ति अवस्था बनाई है परमेश्वर ने। नहीं तो जीव को यदि भगवान नींद न देते, स्वप्न न देते, खाली एक ही अवस्था से युक्त रखते, जागृत अवस्था ही, तो व्यर्थ का ही समय सोने में जाता है ना, उतना अधिक काम कर सकता था जीव, तो कितना विकास होता, उतना समय और काम के लिए मिलता जितना नींद में बर्बाद होता है समय, स्वप्न में बर्बाद होता है समय, उतना समय और ये दोनों अवस्थाएं डिलीट हो जाती जीवन से और रहता खाली एक ही जागृत जीव अवस्था वाला, तो ज्यादा आप पुरुषार्थ कर सकते थे ना। तो ये क्यों स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था दी भगवान ने, कहते यदि स्वप्नावस्था भगवान न देते तो जागृत के मिथ्यात्व को समझना बड़ा कठिन होता, इसलिए उपनिषदों में जागृत के मिथ्यात्व को समझाने के लिए ये स्वप्न के दृष्टांत आते हैं। आपको यदि स्वप्नावस्था न देते भगवान तो स्वप्नावस्था रूपी दृष्टांत से आप सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं, और जिसे जानते ही नहीं उसे दृष्टांत के रूप में बता करके दार्ष्टांत जागृत अवस्था में मिथ्यात्व समझना बड़ा कठिन होता। तो जागृत के मिथ्यात्व को समझाने के लिए स्वप्नावस्था जरूरी है, क्योंकि स्वप्न मिथ्या है ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वप्न देख करके जगने वाला स्वयं ही निश्चित कर लेता है कि जो दिखा दृश्य रात को वह सब कल्पना मात्र था, जागृत जैसा ही था लेकिन मिथ्या था, ऐसे ये जागृत भी मिथ्या है, ये समझ में आ सकता है स्वप्न दृष्टांत से। और मोक्ष कैसा है, शांत है, अद्वैत है, तो मोक्ष की शांत और अद्वैत अवस्था रूपी मोक्ष को समझने के लिए वो मोक्ष की शांति और अद्वितीयता कैसी है, ऐसा कोई पूछे वेदांत पढ़ाने वाले को तो समझाना बड़ा कठिन पड़ता ना यदि सुषुप्ति न होती। तो सुषुप्ति में तो वो द्वैत रहित शांति और अद्वैत की अज्ञान से आवृत्त क्यों न हो लेकिन अनुभूति होती है ना। तो कहा जा सकता है कि जैसे नींद के समय शांति होती है ऐसी शांति मोक्ष में होती है, नींद के समय जैसा अद्वैत है वैसा ही अद्वैत मोक्ष अवस्था में होता है, ये समझाना सरल पड़ेगा ना, इसलिए भगवान ने नींद भी दे दी है। तो उसी निद्रा अवस्था में ही, निद्रा सबके अनुभव की वस्तु है, तुरीय अवस्था में तो कोई कोई पहुंचा हुआ रहता है और उसको समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती फिर, इसलिए जिनको समझाना है वो निद्रा अवस्था से सुपरिचित हैं, निद्रा की शांति रोज अनुभव करते हैं, निद्रा में अद्वैत का भी अनुभव करते हैं, इसलिए इसी शांत और अद्वैत को समझाने के लिए इसी अवस्था में पहले एक दृष्टांत बताया जा रहा है। अपने जागृत और स्वप्न में सारे जो कार्य करता है उन कार्यों को समेट करके ये जीव सुसुप्ति में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। कैसा तैयार रहता है इसे समझाने के लिए ये बताया गया कि स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते। हे सौम्य, ये संबोधन है गार्गे के लिए, पिपलाद जी ने किया हुआ। सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रियदर्शन। इसका प्रियदर्शन यह अर्थ कैसे निकलता है, इसलिए निकलता है कि सोम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है चंद्रमा। सोम यानी चंद्रमा, और सोम जैसा जो है उसे कहा जाता है सौम्य। सोम है चंद्रमा, और चंद्रमा जैसा व्यक्ति उसे कहा जाएगा सौम्य। तो चंद्रमा जैसा व्यक्ति, तो चंद्रमा का सादृश्य जिस व्यक्ति में होगा उस व्यक्ति को कहा जाएगा सौम्य, सबको नहीं। तो चंद्रमा का क्या सादृश्य होगा, तो चंद्रमा दिखने में सबको प्रिय लगता है कि नहीं, चंद्रमा का दर्शन प्रिय होता है, आह्लाददायक होता है, शीतल होता है, खूब आप अपने आंख भर करके चंद्रमा का अवलोकन कर सकते हैं, और जब लगता है देखते ही रहे चंद्रमा की तरफ, तो जो वस्तु आपको प्रिय लगती है उसी की तरफ देखने का मन करता है ना, उसी को लगता है देखते ही रहे। ऐसे चंद्रमा को देखते ही रहने का मन होता है का अर्थ है चंद्रमा प्रिय है। ऐसे प्रिय के तरह प्रिय है, चंद्रमा की तरह जिस व्यक्ति को देखने का ही मन करता है, जिसका दर्शन प्रिय है, जिसके देखने से मन में खुशी होती है, प्रियात्मक वृत्ति बनती है, उसे कहा जाता है प्रिय दर्शन। चंद्रमा की तरह प्रिय है दर्शन जिस व्यक्ति का, वह व्यक्ति सौम्य कहलाता है। तो पहले तीन ऋषियों ने भी प्रश्न किए, लेकिन वे अपराविद्या विषयक थे, और पराविद्या विषयक प्रश्न है गार्ग्य का। और ब्रह्मज्ञानी को प्रिय कौन होता है, प्रिय दर्शन किसका होता है, तो ब्रह्मज्ञानी को प्रिय वो लगता है जो ब्रह्मज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी निरंतर जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है उस स्वरूप की चर्चा में प्रवृत्त करें, उस स्वरूप की जिज्ञासा करें। तो इसलिए यमराज जी के पास तो रोज रोज कितने मनुष्य जाते हैं, लाखों करोड़ों जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को यमराज जी ने वो प्रियतम नहीं कहा, प्रेष्ट नहीं कहा। प्रेष्ट कहते हैं प्रिय में सबसे प्रिय, लेकिन नचिकेता को कहते हैं कि तुम प्रेष्ठ हो, मुझे जितने प्रिय हैं पदार्थ उनमें सबसे प्रिय तुम हो। क्यों? तो नचिकेता ने जिस चर्चा में यमराज को प्रवृत्त किया, आत्मचर्चा में, ऐसी चर्चा अभी तक उनके पास पहुंचे हुए किसी मनुष्य ने उनसे नहीं कराई और नचिकेता ने कराई। इसलिए आत्मज्ञ को प्रिय होता है आत्मजिज्ञासु, और ये आत्मजिज्ञासु है गार्ग्य। तो उन्हें कह रहे हैं कि सौम्य हे प्रिय दर्शन। तो यथा यानी जैसे, वयांसी यानी पक्षी, वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते। वासो वृक्ष कहा जाता है कि निवास स्थानभूत जो वृक्ष, पक्षी किसी एक पेड़ विशेष में अपना घोंसला बना लेते हैं और फिर दिन में अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए उस घोंसले से निकल करके चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं, सब ओर जाते हैं जहां उनकी आजीविका उन्हें मिले, फलादि वो लाते हैं। और जैसे ही सूर्यास्त होना होता है तो सूर्यास्त के पहले पहले फिर अपना घोंसला जिस पेड़ पर है अर्थात उनका निवास स्थान भूत जो वृक्ष है उस वृक्ष के ओर प्रस्थान करते हैं ना, और प्रस्थान करके उसी में आकर के विश्रांति लेते हैं, रात अच्छी तरह से बिताते सुख से, जैसे पक्षी। ये तो दृष्टांत है। ऐसे कहते हैं आप हम भी पक्षी के तरह पक्षी ही हैं, श्रुति ने पक्षी ही कहा है ना हम लोगों को भी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो ये जीव और परमेश्वर रूपी दो पक्षी के तरह पक्षी हैं। तो लेकिन परमेश्वर रूपी जो पक्षी है वो कभी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलता, क्यों? जिसको भूख प्यास लगे तो भूख प्यास को शांत करने के लिए भूख प्यास की औषधि खोज लें, भोजन पानी, और वो जहां मिलेगा वहां उड़ करके जाए। लेकिन भगवान तो अनश्नन अन्यो अभिचाकषी थी, वो तो हमेशा बिना खाए ही एक स्थान पर रह करके देखते रहते हैं हृदय में, इसलिए वो कहीं निकलते नहीं है बाहर। और जीव को तो तय और अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति के अनुसार वो कर्म फल भोगता है ना, तो कर्म फल का निमित्त भूत जो बाह्य पदार्थ है विषय उनको लाने के लिए फिर वो जाता है चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों तक, अपना कर्म फल भोग में निमित्तभूत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों तक पहुंचता है और फिर उनको लेकर के घोंसले में आ जाता है। वो पक्षी दिन भर उड़ते उड़ते थक जाते हैं, फिर रात में सोने के लिए आ जाते हैं अपने घोंसले में। ऐसे जागृत और स्वप्न अवस्था में प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए निमित्तभूत पदार्थों का ग्रहण करते 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 जब थक जाता है ये उन्हीं पक्षियों के तरह, तो फिर क्या हो जाता है कि यह भी उड़ करके इन दोनों अवस्थाओं से चला जाता है सुसुप्ति में, और वहां जाकर के अविद्या में मन की जीव की उपाधि रूप जो मन है वो स्थित हो जाता है। और ये सारा संसार जो है ना मांडू के कारिका में कहा गया वो चित्त का ही परिणाम होने से चैत्य है, यानी चित्त में ही स्थित है। आपका चित्त यदि है, ऐसे मैत्री उपनिषद है, एक मैत्री उपनिषद में भी कहा गया कि ये जो चित्त है यही संसार है। जागृत और स्वप्न में सारा संसार प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? इसलिए कि मन अभिव्यक्त रहता है, और सुसुप्ति के समय मन अपनी सामान्य अवस्था में है, अविद्या के आश्रित हुआ है, अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है। तो उस समय जागृत स्वप्न में प्रतीयमान संसार कहां होता है? का अर्थ है कि चित्त है तो संसार है, और चित्त नहीं है तो संसार भी नहीं है। इसलिए संसार को, संसार बंधन को समाप्त करना है तो क्या समाप्त करना होगा? आप अपने चित्त को समाप्त कर लो। संसार को समाप्त करने के लिए जाएंगे तो कितनों को समाप्त करोगे? लेकिन चित्त को समाप्त कर लें तो जिसने चित्त को समाप्त कर लिया उसे फिर संसार नहीं दिखता। इसलिए मैत्री उपनिषद में कहा गया कि चित्तमेव तु संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत। ये जो चित्त है यही संसार है और इसे क्या करना है कि सारे प्रयत्न करके चित्त को शोधित करना है, शुद्ध करना है। और जैसे ही चित्त शुद्ध होगा तो शुद्ध चित्त परमात्मा है, अशुद्ध चित्त है संसार, शुद्ध चित्त है परमात्मा। चित्त ही मोक्ष है, परमात्मा यानी मोक्ष, और चित्त ही संसार है यानी बंधन है। जो अशुद्ध चित्त है वह संसार है और शुद्ध चित्त, पूर्ण शुद्ध चित्त, निर्दोष चित्त परमात्मा है। इसलिए दूसरे एक श्लोक में कहा जाता है कि चित्तम चिदिति जानियात तकार रहितम यदा। ये चित्त जो है ये चित है, चित्त और चित, इन दोनों में अंतर है। चित्त शब्द में डबल तकार है और चित में एक तकार है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। तो चित भी है ना ब्रह्म, तो ये चित्त आपका चित ही है। चित्तम चिदिति जानियात यानी परमात्मा इति जानियात। लेकिन कब? तकार रहितम यदा, जब तकार से रहित होगा। चित्त शब्द में से त को मिटा दो तो चित है वो। ये त क्या है? तो तकारो विषयाध्यास, तो विषय यानी अनात्मा, और अनात्मा की जो प्रतीति है अनात्माध्यास। त को मिटाने का अर्थ अनात्माध्यास को मिटाना है। जब अनात्माध्यास से रहित होगा चित्त तो वो चित है, परमात्मा है। और उस तकार से युक्त है परमात्मा तो उसे कहा जाता है चित्त। अनात्माध्यास से युक्त परमात्मा चित्त, और अनात्माध्यास रहित चित्त परमात्मा। तो ये जो चित्त है यही सारे संसार की जड़ है। पहले इसके अनुसार तकार से युक्त उसका शोधन है, उसे तकार से रहित करना, अनात्माध्यास से रहित करना। और जिस दिन संपूर्ण रूप से अनात्माध्यास मिट जाएगा उस दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप से अभिव्यक्त होगा। यही इतना ही तो करना है, तकार से रहित करना है चित्त को, अनात्माध्यास से रहित करना है। इसी के लिए बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते होता है। ये तकार से रहित एक त को मिटाने के लिए ही अनेकों जन्म की साधना करनी पड़ती है। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि ये मन जब सुसुप्ति अवस्था में शांत हो जाता है तो सारा संसार अपने में समेट करके शांत हो जाता है। सारा संसार उस समय सुसुप्ति के समय शांत हो जाता है। वो यहां पर कहा एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते। तो जैसे वो रात को सारे दिशाओं में उड़ने वाले पक्षी जिस वृक्ष पे रहते हैं उसी में आकर के सो जाते हैं, विश्रांति को पा लेते हैं, ऐसे ये सारा संसार सुसुप्ति के समय कहां जाता है? तो जिसमें प्रतिष्ठित होता है वह परमात्मा है, ये बताना है। इस पर चर्चा हम लोग कल भी करेंगे।